यह भारत भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है, बड़ी ही पावन भूमि है। एक समय था जब महान संस्कृति वाले इस देश में सभी नर नारी देवी देवता थे। पशु पक्षी यहां तक कि प्रकृति भी सतो प्रधान थी। यहां आचार विचार और संस्कारों के निर्माण के लिए कई पंथ बने। लोगों ने आस्था और विश्वास के लिए अनेक मार्ग बनाए। आप उन श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो यहाँ आए हैं। आप इस युग के सुनहरे क्षणों में यहाँ आए हैं। यहाँ आपको अति प्राचीन एवं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान जिसकी आपको युगों से प्रतीक्षा है। आज मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा भौतिक रूप से आशातीत प्रगति की है और अपने जीवन को आरामदायक भी बनाया है, परंतु आज भी बड़े बड़े देशों के लोग सच्ची मानसिक शांति की अनुभूति से बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से शरीर को सुखी बनाने में लगा हुआ है। हम अपने मन की आंतरिक शक्तियों एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं को बिल्कुल भूल चुके हैं। अतः भौतिक प्रयास के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। आज विश्व आतंक व संघर्ष के कारण टूट चुका है और धर्म एवं राष्ट्रीयता के आधार पर बट चुका है। विज्ञान की सफलताएं भी मनुष्य को आंतरिक शांति नहीं दे पा रही हैं। विज्ञान ने स्थानों के बीच की दूरियां तो कम कर दी, परंतु क्या दो मनुष्यों के दिलों को नजदीक ला पाया है? और यह तभी संभव है जब हम समाज में परिवर्तन लाने के बजाय अपने मन में परिवर्तन लाएं। आज आनंद प्राप्ति के साधन तो बढ़ गए हैं, पर आनंद नहीं बढ़ा है। आनंद दिलाने वाला एक ही अनिवार्य कारक है, आध्यात्म। आध्यात्म जो मनुष्य को जोड़ता है, आज उसी के नाम पर स्वार्थ वृत्ति हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग हिंसक हो रहे हैं, समाज में भय चिंता व घोर निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनुष्य का आत्मविकास कैसे हो? अब समय की आवश्यकता है कि एक ऐसी व्यवस्था का पुनर्निर्माण हो जिससे यह दुनिया पुनः स्वर्ग बन जाए। और ऐसी व्यवस्था के लिए व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। यह परिवर्तन केवल राजयोग के अभ्यास से ही संभव है। मानव जीवन की सार्थकता अपने अंदर छुपे हुए दैवी संस्कारों की यथार्थ पहचान देने में है। आज मनुष्य भौतिकता की भीड़ में स्वयं को भूल गया है। इसी कारण से उसकी जीवन यात्रा मानसिक तनावों, दबावों और मुश्किलों में गुजर रही है। अधिकांशतः यह मन मनुष्य को बहुत परेशान करता है। यदि मन को सही दिशा प्रदान की जाए तो वह शक्तिशाली बनकर मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता है। जब मन में सकारात्मक संकल्प चलते हैं तो जीवन की राहें स्वर्णिम उपलब्धियों से भर जाती हैं। अतः स्वर्ग और नर्क की अवधारणा ऐतिहासिक न होकर हमारे संकल्पों की दिशा पर निर्भर करती है। यह बात तो सभी निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है। फिर परमात्मा को याद करने की पूजा पद्धतियों, विधियों एवं प्रार्थना स्थलों में अभिन्नता क्यों? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च सब एक ही ज्योति बिंदु परमात्मा में आस्था की अभिव्यक्ति है, जिसे हम गॉड, खुदा या जेहोवा किसी भी नाम से पुकारें, उसका यथार्थ स्वरूप ज्योति बिंदु ही है। परमात्मा के यथार्थ रूप की पहचान न होने के कारण हम धर्म भेद, जाति भेद और प्रांत भेद जैसी अनेक मान्यताओं में विभाजित हो गए हैं। आध्यात्म के नाम पर हिंसा व घृणा करने लगे हैं, जबकि सर्व धर्म के लोगों की आवश्यकता तो एक ही है, शांति। शांति के लिए आवश्यक है राजयोग। केवल राजयोग द्वारा ही मन को परमात्मा में एकाग्र कर मानसिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिससे व्यर्थ संकल्प और बुराइयां खत्म हो जाती हैं। अतः ऐसी अवस्था में दिव्य गुणों को धारण करना सहज हो जाता है। साधारणतया लोग योग शब्द को शारीरिक आसनों और क्रियाओं का वाचक मानते रहे हैं, परंतु यहाँ जिस राजयोग की हम चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही सहज योग है। राजयोग सभी योगों में सर्वोत्तम योग है। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़, जिसमें आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ा जाता है। अतः योग शब्द परमात्मा के स्मृति का पर्याय है। इसके अभ्यास के लिए पहले स्वयं को इस भाव में स्थित करना है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं दो नैनों के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूं, मैं परमात्मा पिता की अविनाशी संतान हूं, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं शांति, प्रेम, पवित्रता एवं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता हूँ, परम धाम मुझ आत्मा का धाम है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रहा हूँ, हम सभी आत्माएं एक ही परम पिता शिव की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, शांति मेरा स्वधर्म है, पिता परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांति की लहरों में झूल रही हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए मन और बुद्धि द्वारा परमात्मा शिव से स्नेह युक्त मिलन मनाना ही राजयोग है। इस राजयोग से शांति और शक्ति की सहज ही अनुभूति होती है। राजयोग के द्वारा हम संकल्पों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। जिस प्रकार भोजन से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग रूपी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। अतः जीवन के हर पहलू में जो दिव्यता की सुगंध एवं सफलता देता है, वह एकमात्र राजयोग है। इस प्रकार राजयोग द्वारा मनुष्य सर्व आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करता है, जिससे वह जीवन उमंग और उत्साह के साथ जीता है और प्राप्त हुए गुण और शक्तियों को सर्व आत्माओं में बांटता रहता है। यही राजयोग उसे भविष्य में आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में उच्च पद का अधिकारी बनाता है। यह सृष्टि एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम आत्माएं शरीर धारण कर सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक भिन्न भिन्न पार्ट बजा रही हैं। कलयुग के अंत में सर्व आत्माओं के पिता जो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा हैं, वे आकर पुनः इस धरा पर दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। वे सर्व आत्माओं को उनकी यथार्थ पहचान दे रहे हैं। अब सर्व आत्माओं को अपने पाठ को समाप्त कर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने परमात्मा पिता के साथ वापस अपने घर परम धाम लौटना है। अब पुनः अपने घर लौटने का समय आया है। कुछ देर के विश्राम के बाद पुनः पाठ बजाने के लिए सतयुगी दुनिया में जाना होगा। अतः अब हमें देह और दैहिक संबंधों को भुलाकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पिता को याद करना है, ताकि आसुरी वृत्तियों से मुक्त होकर हम अपने निज धाम परम धाम जाने के योग्य बन सके। ओम शांति। Thank you.
ओम शांति। सुस्वागतम।
यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
सदियों से भारत भूमि पर देवियों की पूजा अर्चना अपने परंपरागत विधि विधान के साथ होती आ रही है। इतनी पवित्र, उज्ज्वल, सर्व गुणों से संपन्न अपने प्रभा मंडल पर दिव्य तेज ली हुई आखिर ये देवियां कौन थी और किस विधि से इन्होंने मानव जाति का कल्याण किया था? अब वह देवियां चैतन्य रूप में कहाँ हैं? क्या अब वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकती? गति सृष्टि का अनादि नियम है और परिवर्तन उसका आवश्यक पहलू। अविराम गति लिए सृष्टि रूपी नाटक के इस रंगमंच पृथ्वी लोक ने न जाने कितने परिवर्तन देखे होंगे। अविनाशी आत्माएं जन्म जन्मांतर से पंच तत्व निर्मित मनुष्य का विनाशी चोला धारण कर इस रंग मंच पर अपना अपना अभिनय करती आ रही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के अंतराल में पुनर्जन्म लेती हुई आत्माएं क्रमशः सतो प्रधान स्थिति से धीरे धीरे तमो प्रधान पतित बनी जाती है, जहां काम, क्रोध और अहंकार आदि विकारों की अधिकता के कारण पापाचार, भ्रष्टाचार का चहु ओर वर्चस्व होता जाता है। अधर्म अपना विकराल रूप धारण कर मानवता को ग्रास बनाकर अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा है और सृष्टि एक अविश्वम्भावी विनाश की ओर बढ़ती ही जा रही है।
धर्म ग्लानी के ऐसे घोर तमो प्रधान कलयुग के अंत में पतित दुखमयी सृष्टि को पुनः सुखमयी पावन सतयुगी सृष्टि के रूप में परिवर्तन करने का मंगलमय संकल्प लेकर सूर्य चांद तारा गण से भी पार ब्रह्मलोक निवासी कल्याणकारी ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं।
निजानंद रूपम शिवोऽहम् शिवोऽहम् ज्ञान स्वरूपम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् प्रकाश स्वरूपम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्
सुख शांति आनंद एवं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिनकी अपनी कोई देह नहीं है, वे सृष्टि के शुभ परिवर्तन का दिव्य कर्तव्य करने हेतु एक साकार मनुष्य तन का आधार लेते हैं और विश्व का नवनिर्माण करने के निमित्त बनाकर उनका अलौकिक नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा।
सृष्टि का नव निर्माण करने के लिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक अनोखी ही विधि अपनाई। उन्होंने जन्म जन्मांतर से प्रताड़ित अपमानित और निरा अबला समझी जाने वाली नारी को आत्मज्ञान का बोध कराया और उन्हें आत्मसम्मान देकर उनके अंदर सन्निहित सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया। ये उन ज्ञान कलश प्रदान कर सृष्टि परिवर्तन के इस महान पावन कार्य के लिए आगे बढ़ाया और उन्हें आध्यात्मिकता की देवी के रूप में जग में प्रत्यक्ष किया, इसलिए उन्हें ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इस विधि से परमात्मा ने माताओं बहनों के द्वारा एक अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब वह सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि का शुभ मंगलकारी परिवर्तन करने के लिए जाग उठी, इसलिए इन्हें शिव शक्तियां भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति द्वारा जो विश्व का कल्याण किया था, उसकी झलक आप इनकी अचल अडोल उपराम अवस्था द्वारा देख सकते हैं तथा इन देवियों से विनिश्चित प्रेम शांति और आनंद के प्रकंपनों को अनुभव कर सकते हैं।
सर्व दुखी और अशांत आत्माओं को सुख शांति का अमर वरदान देकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली यही माँ जगत अम्बा है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव से प्राप्त ईश्वरीय शक्ति द्वारा विकारों रूपी महिषासुर का नाश करने वाली यही शिव शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है।
जय जय दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी,
जग जननी ये
आज भवानी
जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी, जग जननी ये
आज भवानी
जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी।
सर्व आत्माओं को ज्ञान धन एवं गुण रूपी हीरे मोतियों से सुसज्जित कर सुख समृद्धि का अखुट भंडार देने वाली सर्व की आराध्य देवी यही माँ लक्ष्मी है।
इस जीवन के संचालन में जीवन के संचालन में साथ रहो लक्ष्मी माता, मनोकामना पूरी करना नहीं कमी माता। इस जीवन के संचालन में साथ रहो लक्ष्मी माता, मनोकामना पूरी करना नहीं कभी माता। इस जीवन के संचालन
ज्ञान वीणा के झंकार द्वारा मानव को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली यही श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी माँ सरस्वती है।
नमस्ते शारदे देवी, काश्मीर पूर्ववासिनी, त्वाम
मनुष्य आत्माओं पर लगे हुए आसुरी संस्कारों के कलंक को मिटाने वाली यही शिव शक्ति ही माँ काली भी है।
भूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका, त्वन्न पुरुणावाद देवी त्वं देवी कमलालया, सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनु, त्वमेव सूक्ष्मात् स्थूला त्वं व्याप्त व्याप्त स्वरूपिणी, निरातरापि तदारा कस्त्वं वेदितुमर्हति, उपासकानां कार्यर्थं श्रेयसे जगतामपि।
विषय विकार मिटाकर सर्व मनुष्य मात्र में पवित्रता का प्रकाश भर उन्हें देवत्व प्रदान कराने वाली यही वैष्णव देवी भी।
मैं जानू वैष्णव माता तेरे ऊंचे भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया।
दुखी और प्रकाश मनुष्य आत्माओं के अंदर उमंग उल्लास भरने वाली यही उमा देवी भी है। विषाद में डूबे मनुष्य मात्र के दुखों को दूर कर सबके मन को हर्षाने वाली, खुशियों का वरदान लुटाने वाली यही आनंदमयी गायत्री देवी भी है।
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ
यः उज्ज्वल निर्मल सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने वाली शिव शक्ति ही मां संतोषी भी है।
जय संतोषी माता।
परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाए गए सहज राजयोग के अभ्यास में मग्न मुद्रा में ये वही ब्रह्मा कुमारियां बहने हैं जिन्हें यदा कदा आप अपने ही आसपास देखा करते हैं।
जी हाँ, आप भी राजयोग के अभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर उसे तनाव मुक्त, सुख शांतिमय, निर्मल तथा निश्चिंत बना सकते हैं। अतः इस राजयोग की निःशुल्क शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र में प्राप्त कर सकते हैं।
शिव शक्तियाँ आ गई
धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई।
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
चेतन में वो
शक्तियाँ आ गई।